का था, रूह वही रूप नया।
हाँ, उस संध्या की स्मृति को विस्मृत नहीं किया जा सकता। तकरीबन आधे घंटे तक मेरे जहन पर व्यवस्था का खौफनाक व भयप्रद प्रभाव छाया रहा। मेरा दिल वैसे ही डूब रहा था जैसे गहरी खान में जाने पर डूबता हुआ सा महसूस होता है। मैंने मानवीय संवेदनाओं व आपदाओं की अतल गहराइयों को स्पर्श किया व उनकी अनुभूति भी की। मैं भली प्रकार समझ गया था और महसूस कर चुका था कि असामान्य परिस्थितियों के जारी रहते किसी नेक ईमानदार शख्स का जीना दूभर हो जाता है, जीवन कितना असंभव बन जाता है। सिर्फ आधी रात्रि ही अभी गुजरी थी और मैं वाउडे विले के ड्रुयूर मार्ग की तरफ जा रहा था। मेरे साथ साथ आगे पीछे ब्यूले वार्ड के अनेक लोग आ जा रहे थे। सभी के पास छतरियां थीं। बारिश की फुहारें बरसने की बजाय गिर रही थीं, अर्थात धीमी थीं। फुहारें सड़क के किनारे लगे लैंप के प्रकाश पर एक आवरण सा डाल रही थीं, जिससे सड़कें एकदम उदास और मातमी प्रभाव दर्शा रही थी। सड़क के किनारों के फुटपाथ दमक रहे थे तथा कम गीले होने के कारण कीचड़ से ज्यादा भर गए थे। लड़कियां अपनी स्कर्ट ऊपर उठाए हुए थीं, जिसके कारण पैरों पर पहने हुए सफेद स्टॉकिंग्स उस धुंधली रोशनी में भी स्पष्ट नजर आ रहे थे। बिछाया से आच्छादित द्वारों के करीब खड़ी थी, कुछ राहगीरों को बुला रही थी और उनमें से कुछ तेज निडर बेशर्म लड़कियां कटाक्ष भरे शब्द जो कुछ अश्लील और फूहड़ भी थे एक दूसरे के कानों में बोल रही थी। वे लड़कियां किसी शख्स का कुछ समय तक पीछा करती और उनके चेहरों पर अपने मुंह की सी गंदी सांस छोड़ते हुए टकरा कर निकल जाती, फिर अपनी कोशिशों को नाकाम होते देख उदास भिन्न कदमों से एकाएक बीच में उसे छोड़कर पुनः किसी नए ग्राहक की खोज आरंभ कर देती। मैंने चलना जारी रखा। मुझसे सभी बातें कर रही थी। कुछ ने मेरी कमीज की बांह थाम ली थी। मुझे परेशान किया जा रहा था, फांसने का पूरा प्रयास किया जा रहा था और मैं बेहद परेशान होने के उपरांत भी खामोशी से सीधे सीधे आगे बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक तीन पेशेवर लड़कियों को मैंने मारे भय के भयभीत होकर बेतहाशा मेरी तरफ दौड़ते हुए पाया। वे परस्पर किसी विचित्र भाषा में कुछ बातें कर रही थीं। और भी स्त्रियां व लड़कियां अपने दोनों हाथों से अपने वस्त्रों को थामे बदहवास भागी जा रही थीं। दरअसल उस दिन वैश्याओं के ठिकाने पर पुलिस ने अचानक छापा मारा था। अचानक मैंने अपने जिस्म पर एक लड़की की बांह को लिपटे हुए पाया और उस लड़की ने बेहद भयभीत आवाज में मेरे कानों में फुसफुसाहट की, सर सर प्लीज मुझे बचा लीजिए, ईश्वर के लिए मेरा साथ मत छोड़िए। मैंने लड़की पर निगाह हटा ली। वो मुश्किल से 20 वर्ष की भी नहीं थी, किंतु इतनी कम उम्र में वो घबराई हुई और परेशान लग रही थी। मैंने उससे कहा, डरो नहीं, घबराओ नहीं, बस मेरे साथ चलती रहो। वो फुसफुसाई, थैंक यू। हम लोग चकले पर पहुंच गए। उसने वहां अपनी वास्तविक पहचान बताई ताकि मुझे भी भीतर घुसने का अवसर मिले। मैं वहां ड्रायोर मार्ग पर उसके दलाल से मिला। मेरी साथी ने मुझे जानना चाहा, क्या आप मेरे साथ घर चलना पसंद करोगे? नहीं। क्यों नहीं? तुमने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है जिसे मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी। मैंने उसको चतुर उत्तर दिया ताकि उसे बुरा ना लगे। अरे, ये सब मैंने किया क्योंकि मैं विवाहित हूं। इससे क्या फर्क पड़ता है? उसने पलकें झपकाई। माय डियर, तुम देखो और समझो, यही पर्याप्त है कि मैंने तुम्हें परेशानी से बचाया है और तुम अब खामोशी से मुझे यहां से चले जाने दो। सड़क अब वीरान हो गई थी और अंधेरी भी, सही अर्थों में मनहूस। और वो लड़की जो मेरा हाथ थामे खड़ी थी मुझ पर व्याप्त उदासी और खौफ की ज्यादा अनुभूति करवा रही थी। उसने मुझे अपने आगोश में लेना चाहा। मैं मारे भय के दूर भाग गया और उसने तीखी आवाज में पूछा, अरे शांति और समझौते के नाम पर एक दफा भी नहीं। तब अचानक उसने मुझे कुछ क्रोध दर्शाया और फिर एकाएक ही सुबकने लगी। मैं कुछ अचरज से भर गया। मुझे उससे ऐसी आशा नहीं थी, अतः मैंने अंत में पूछ ही लिया, अच्छा मुझे बताओ आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ। रोते हुए वो धीरे से बोली, यदि तुम वो सब जान गए तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो? कोई शिकायत है तुम्हें?
उस जिंदगी से शिकायत है जो मैं अभी जी रही हूं।
अरे तो फिर तुमने ऐसी जिंदगी का चुनाव किया ही क्यों?
ये मेरी गलती नहीं है।
तो फिर किसकी गलती है?
मैं जानती हूं कि ये गुनाह किसका है, मैं सब जानती हूं।
उस अनाथ नामालूम लड़की ने मेरी उत्सुकता जगा दी। मैंने आग्रह किया, मुझे अपनी पूरी कहानी तो सुनाओ। तो उसने मुझे ये तमाम किस्सा बताया।
मैं उस वक्त 16 वर्ष की थी और येवरोन में एक अनाज कारोबारी मिस्टर लेराबेल के घर में काम किया करती थी। मेरे माँ बाप गुजर चुके थे और मेरा संसार में कोई नहीं था। निसंदेह मैंने ये समझ लिया था कि जो मेरा मालिक है वो मुझे बहुत अजीब तरह से देखा करता है, कभी कभी मेरे गाल पर चिकोटी भी भरता है। और शीघ्र ही मैं खुद से प्रश्न करने लगी कि उसका इरादा क्या है। हाँ मैं ये तमाम बातें सब समझती थी, सब जानती थी। शहरों में रहकर लोग समझदार तो हो ही जाते हैं, किंतु मिस्टर लेराबेल बहुत ही बूढ़े और बड़े धार्मिक किस्म के आदमी थे और हर रविवार को बिना छुट्टी किए हमेशा चर्च जाया करते थे। मैं कभी भी मालूम नहीं क्यों उसे किसी काम के लायक नहीं समझती थी। लेकिन फिर एक दिन वो दिन आ ही गया जब उसने मुझे रसोई घर में ले जाने की इच्छा जताई। मैंने बहुत विरोध किया, बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गया और उसने अपने मन की बुरी जबरदस्ती मेरे साथ की। हमारे घर के सामने राशन का सामान बेचने वाले एक मिस्टर उन्स्टन रहा करते थे। उनकी दुकान पर एक बहुत सुंदर लड़का काम करता था। वो इतना सुंदर था कि मैं कभी कभार उसे परेशान करती थी और वो भी मुझसे छेड़खानी करता था। मैं कभी बुरा नहीं मानती थी, ऐसा तो हर किसी के साथ होता ही है ना, क्या नहीं होता ऐसा? हाँ, मैं अक्सर रात को अपना दरवाजा खुला छोड़ देती थी ताकि वो अंदर आ सके। लेकिन एक रात मिस्टर लेराबेल ने उसकी आहट सुन ली और वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ धमके मेरे कमरे में। वहां पर एंटोनी भी था और उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी और उसे मारने की कोशिश भी की। उन दोनों के बीच में कुर्सियों, पानी के जग और कमरे में जो भी सामान रखा था उससे उठाकर लड़ाई होने लगी। मैंने कुछ हिम्मत की और दौड़कर एक खुले रास्ते पर आ गई। बस इस तरह मेरी शुरुआत हुई। मैं बहुत डरी हुई थी, मुझे दुनिया से बहुत डर लगता था। मैंने एक द्वार के पीछे अपने कपड़े बदले और बस सीधे नाक की सीध में चलना शुरू कर दिया। मैं मन ही मन सोच रही थी कि घर में जो भी लड़ाई हुई है उसमें कोई ना कोई ज़रूर मर गया होगा और पुलिस ज़रूर मेरी खोज कर रही होगी। मैं रोयून जाने वाले मुख्य रास्ते पर आ गई और मैंने मन ही मन ये मान लिया कि मैं रोयून में अपने आप को कहीं ना कहीं छुपा लूँगी। रात इतनी अंधेरी थी कि मुझे रास्ते में गड्ढे तक नजर नहीं आ रहे थे और मेरे आसपास खेतों में कुत्ते भौंक रहे थे। क्या आप उन तमाम बातों को जानते हैं जो रात में कोई सुनता है। कुछ ऐसे पंछी होते हैं जो जो जैसे जैसे किसी ज़िबा होने जैसे इंसान की तरह चीखते हैं, और पक्षी भी एक तरह से कुत्तों की तरह भौंक रहे होते हैं, कुछ अपने मुंह से सीटी बजाते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें थी जो मुझे समझ में ही नहीं आ रही थी। मैं एकदम अकेली और डरी हुई थी। प्रत्येक कदम पर मैं अपने सीने और माथे पर बार बार क्रॉस का निशान बनाती जा रही थी। कोई ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि इन कोशिशों से दिल को कितना सुकून और राहत मिलती है। जैसे ही सुबह हुई, एक दफा दोबारा मुझे पुलिस की कल्पना से खौफ ने जकड़ लिया और मैं पूरे जोरों से रास्ते पर भागने लगी। उसके पश्चात मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की। इस सब के डर के बाद मुझे बहुत भूख सताने लगी, किंतु मेरी जेब में एक फ्रैंक भी नहीं था, क्योंकि जल्दबाजी में भागने के चक्कर में मैंने अपने सारे जमा 18 फ्रैंक घर पर ही छोड़ दिए थे। इसलिए भूख और खाली पेट चलते चलते मैं बहुत परेशान हो गई, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सुबह भी बहुत तेज गर्मी थी, सूरज तप रहा था, दोपहर हो गई थी और मैं निरंतर चलती जा रही थी। तभी मैंने पीछे कुछ आहटें सुनी और देखने के लिए पीछे घूमी। घोड़ों पर पुलिस वाले, मारे खौफ के मेरा खून जम गया, मुझे चक्कर आने लगे, लेकिन मैं चलती रही। मुझे ऐसा लग रहा था वो लोग मुझे पकड़ ही लेंगे, क्योंकि वो लोग मेरी तरफ घूर रहे थे। फिर उनमें से एक बुजुर्ग पुलिस वाले ने मुझे कहा, गुड डे मैडम। मैंने भी कहा, गुड डे सर। उसने कहा, आप किधर जा रही हैं? मैं रॉयून की तरफ जा रही हूँ, वहाँ मुझे नौकरी मिली है। मैंने ऐसा कहा, आप इस तरह पैदल जा रही हैं? जी हाँ, पैदल जा रही हूँ। पर मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई। मैं खुद मन ही मन सोच रही थी कि अब ये लोग मुझे पकड़ लेंगे, और मेरी इच्छा हुई कि मैं इतना तेज़ दौड़ूँ, लेकिन मेरे कदम लड़खड़ा उठे। पर फिर भी वो लोग मुझे पकड़ तो लेंगे ही ना। बुजुर्ग पुलिस अधिकारी ने मुझसे दोबारा पूछना शुरू किया, मैडम आप चाहें तो हम लोग ब्रांटन तक आपके साथ चल सकते हैं, क्योंकि हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, जी ठीक है। कुछ देर हम लोग परस्पर बातें करते रहे। मैं खुद को जितना अधिक हो सकता था बस सहज रखने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही हम लोग एक वीरान इलाके से गुजरे, वो बुजुर्ग आदमी ने मुझसे कहा, क्या आप कुछ देर रुककर आराम करना चाहेंगी? मैंने बिना कुछ सोचे समझे जवाब दिया, ठीक है, जैसा आप कहें। तब वो अपने घोड़े से नीचे उतर गया और अपने साथी को घोड़े की लगाम थमा दी, और हम लोग सड़क के किनारे लकड़ियों के जंगल में चले गए। वहां कुछ कहने सुनने की संभावना ही नहीं थी। आप मेरे स्थान पर होते तो आप क्या कर पाते? वो जो पाना चाहता था उसने पा लिया, और फिर मुझसे बोला, मुझे अपने साथी की इच्छा का सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए। वो अपने घोड़े के करीब लौट गया और उसका साथी मेरे पास आ गया। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मैं सिर्फ रो रही थी। पर मैंने अपने दिल को कठोर करके अपने आप को संतुलित कर लिया। उसके बाद हम लोग अपने मार्ग पर चल पड़े। उन दोनों से मैंने कोई बात नहीं की। मेरे दिल में खौफनाक वेदना थी, फिर भूख के कारण आगे चलने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। तब एक गांव में कुछ लोगों ने मुझे वाइन पीने के लिए दी, जिसने मुझे थोड़े समय के लिए कुछ ताकत और हौसला दिया। उसके पश्चात वो लोग ट्रॉन्ट की तरफ मुड़ गए। यूं भी उन्हें मेरे साथ ब्रांटन तो जाना नहीं था, मैं अकेले गड्ढे में बैठ गई और तब तक रोती रही जब तक मेरे सारे आंसू नहीं सूख गए। रोयून पहुंचने से पहले मैं निरंतर 3 घंटे तक चलती रही। जब मैं वहां पहुंची तो शाम के लगभग 7 बज गए थे। शुरू में तो वहां तेज रोशनी ने मुझे बहुत चौंधिया दिया। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आराम करने के लिए मैं कहाँ बैठ सकती हूँ। आते वक्त रास्ते में बीच बीच में कुछ घास या कुछ पुलियाँ थी जहाँ पर मैं इत्मीनान से लेटकर भी सो सकती थी, लेकिन इस शहर में तो कोई सुविधा ही नहीं थी। मेरे पैरों ने मेरे शरीर का वजन उठाने की ताकत ही छोड़ दी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं चकरा कर गिर पड़ूंगी और उसके पश्चात अचानक वर्षा होने लगी। हल्की वर्षा जैसे आज शाम हो रही थी, जो बिना आपको अनुभूति करवाए आपके मन और जिस्म पर असर डालती है। जब भी बारिश होती है तो मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता, न जाने क्यों। मैंने दोबारा सड़क पर चलना आरंभ कर दिया। इर्द गिर्द के समस्त घरों की तरफ देखा मैंने। मैं मन ही मन कल्पना कर रही थी कि इन घरों में नर्म नर्म मुलायम बिस्तर और खाने को पर्याप्त सामान होगा, किंतु मैं जानती हूँ कि मुझे ना तो ब्रेड का एक टुकड़ा ही मिलेगा और ना सोने के लिए कोई बिस्तर। मैं कुछ गलियों से होकर गुजरी जहाँ अनेक स्त्रियाँ सड़क पर चलते हुए आदमियों से बातें और मोलतोल कर रही थी। ऐसे अवसर पर किसी को वही करना चाहिए जो वो कर सकता है। मैं भी उन स्त्रियों की भांति एक जगह पर खड़ी हो गई और हर किसी को अपनी तरफ संकेत से बुलाने का काम करने लगी, किंतु किसी ने भी मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। मेरी इच्छा हुई कि मैं मर ही जाऊं। ये कोई आधी रात की बात होगी। फिर मुझे होश ही नहीं कि मैंने आगे क्या किया। आखिरकार एक ग्राहक ने मेरी बात सुनी और मुझसे पूछा, तुम कहां रहती हो? किसी प्रकार का बहाना बनाया जाना तो जरूरी ही था, तो मैंने उत्तर दिया, मैं आपको अपने घर नहीं ले जा सकती क्योंकि मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। लेकिन क्या आसपास यहाँ कोई जगह नहीं है जो हम किराए पर ले सकें? तो उसने उत्तर दिया कि मैं ऐसे कामों के लिए कभी कभी कोई मकान कोई जगह 20 फ्रैंक में किराए पर ले लेता हूँ। फिर उसने ये भी जोड़ा कि मुझे कोई वीरान स्थान मालूम है जहाँ पर लोगों से हमें कोई परेशानी नहीं होगी। आखिर में वो मुझे शहर से बाहर की तरफ एक पुल पार करवाकर नदी के तट और एक बड़े ही वीरान मैदान में ले गया। मैं खामोशी से उसके पीछे पीछे चलती रही। मेरे पास इसके अलावा और कुछ चारा भी नहीं था। उसने मुझे एक जगह जमीन पर बैठा दिया और मुझसे पूछने लगा, अच्छा बताओ आखिर हम यहाँ शहर से दूर वीरान में क्यों आए? चूंकि उसको अपना काम करना था जिसके लिए वो मुझे यहाँ लाया था, उसमें बहुत देर लगी। उस काम के बाद मैंने अपने आप को थकान से ऐसा चूर पाया कि कुछ देर बाद मुझे वहाँ लेटे लेटे नींद आ गई। वो मुझे बिना पैसे दिए यूं ही अकेला सोता छोड़कर भाग खड़ा हुआ। नींद खुलने पर मैं एक कदम भी नहीं चल सकी। उस दिन के बाद मुझे कुछ ऐसी तकलीफें हो गई जिसका कभी कोई इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सारी रात नदी के तट पर ठंडी जगह पर पड़ी रही। फिर 2 पुलिस वालों ने मुझे पकड़कर उठाया और पास के पुलिस थाने में ले गए और फिर जेल भेज दिया, जहां मैंने 8 दिन गुजारे। इस बीच वो मुझसे तरह तरह की जानकारियां इकट्ठी करते रहे कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं। डर के मारे मैंने उन लोगों को कुछ भी नहीं बताया। फिर भी उन्हें मेरे बारे में आखिरकार सब कुछ पता चल गया और आखिर में मेरे बेगुनाह होने की वजह से उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उसके बाद मेरे लिए ज़रूरी हो गया था कि मैं खुद को जिंदा रख सकूं और उसके लिए पैसा कमाऊं। मैं इधर उधर नौकरानी का काम तलाशने लगी, लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दिया क्योंकि मैं जेल जा चुकी थी। तब मुझे एक पुराने जज की याद हो आई, जो मेरे इस प्रकरण में निर्णय करते वक्त मेरी तरफ लहरा बैल की तरह बड़ी बड़ी कामुक दृष्टि से घूर रहे थे। मैंने उन्हें तलाशने की कोशिश की और उनका पता लगाकर उनके घर चली गई। मुझे अपने निर्णय पर पछताना नहीं पड़ा। जब मैं उनसे मिलकर कुछ देर बाद उनके घर से निकली तो उन्होंने मुझे ये कहते हुए 100-100 के फ्रैंक दिए और कहा कि हर बार तुमको इतने ही पैसे मिलेंगे, लेकिन तुम हमेशा मत आया करो, हफ्ते में 2 दफा से ज्यादा नहीं, ठीक है? मैं उनकी बात ठीक तरह से समझ गई। उसकी ज्यादा उम्र को देखते हुए अचानक मेरे जहन में एक बात गूंजी। मैंने मन ही मन अपने आप से कहा, जवान लोग मजा लूटते हैं और खुद को भी खुश रखते हैं, लेकिन वो ऐसे मोटे नहीं होते, जबकि बुढ़े और बुजुर्ग लोगों के साथ इसका उल्टा होता है। उसके बाद मैं इन लार टपकाते बुढ़े लोगों की गड्ढों में धसी आंखों और शैतानी खोपड़ी को अच्छी तरह पहचानने लगी हूं। आपको पता है सर, मैंने इसके बाद क्या किया? इसके बाद मैंने हमेशा गांव वाली लड़कियों की तरह कपड़े पहनना शुरू कर दिया, जो अक्सर शहर में खरीदारी करने आती हैं, और मैं अपना पेट भरने के लिए इसी तरह सड़कों पर घूमा करती हूँ, जो एक नज़र में ही ऐसे लोगों की शिनाख्त कर लेती है कि ये शख्स एक बार तो फंस ही जाएगा। ऐसे लोग जो अक्सर मेरे पास आएंगे, वो कुछ इस तरह से बात करना शुरू करते हैं, हेलो मिस, गुड डे मैम, और फिर मैं कहती हूँ, गुड डे सर, आप इस तरह इधर उधर अकेली क्यों जा रही हैं? तो मैं कहती हूँ कि मैं अपने मालिक के घर लौट कर जा रही हूँ। तो वो कहते हैं, क्या आपके मालिक बहुत दूर रहते हैं? हाँ, दूर तो रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहते। उसके बाद उन्हें कुछ नहीं सूझता कि और क्या बात कहें या क्या करें। तब मैं उन्हें अपनी बात ज्यादा विस्तार से कहने का मौका देती हूँ और धीरे धीरे चलने लगती हूँ। फिर बातों बातों में वो मेरी तारीफ करने लगते हैं और कुछ साहस करके मुझे अपने साथ चलने का आग्रह भी करते हैं। जवाब में दिखावे के लिए पहले तो मैं मना कर देती हूँ, आप तो समझते ही हैं, और तब आहिस्ता से उनका प्रस्ताव मान लेती हूँ। प्रत्येक सुबह मुझे इसी प्रकार के 2-3 ग्राहक तो मिल ही जाते हैं, और इस प्रकार मेरी पूरी दोपहर तकरीबन खाली रहती है। वो मेरी जिंदगी के सबसे खुशी के पल थे, मैं भी तो आखिरकार हाड़ मांस की ही बनी हूं ना। किंतु ऐसा लगता है कि कोई इंसान लंबे वक्त तक एक ही स्थिति में नहीं रह सकता। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने एक दफा एक पुराने अध्यक्ष से, जो एक बड़े धनवान व्यक्ति थे, दोस्ती कर ली। वो तकरीबन 75 साल के थे। एक शाम वो मुझे खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले गए, और फिर आप तो समझते ही हैं ना, उसे नहीं पता था कि किस प्रकार मर्यादा और सीमा में रहना चाहिए। खाना खाते खाते उसकी मौत हो गई। मुझे 3 साल जेल में रहना पड़ा क्योंकि मैं रजिस्टर्ड वैश्या नहीं थी। उसके बाद मैं पेरिस आ गई। ओह मिस्टर, पेरिस में रहना और जिंदा रहना बेहद मुश्किल है। यहाँ हर दिन खाना मिल जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं होता। यहाँ तो मेरे जैसी बहुत हैं, सब अपनी अपनी किस्मत की ही भुगत रही हैं। क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं साहब? इतना कहकर वो चुप हो गई। मैं उसके साथ उसकी बगल में चल रहा था, एकाएक वो मुझसे लड़ने लगी और बड़ा अपनापन जताने लगी। तो आप मेरे साथ मेरे घर नहीं चलेंगे सर?
नहीं,
मैं पहले ही मना कर चुका हूं।
ठीक है तो फिर थैंक यू वेरी मच।
बिना किसी जलन या दुश्मनी के एक बार आपसे फिर कहना चाहूंगी कि आप गलती कर रहे हैं। और वो बारिश में भीगती हुई किसी झीने आवरण की भांति माहौल में छाई थी, चली गई। मैं उसे एक गैस लैंप पोस्ट के नीचे से जाते हुए देख रहा था। कुछ ही देर में वो अंधेरे में गायब हो गई, वो अभागिन लड़की।